संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे समय साज परमगम की कर्ता कर्म अधिकार में 105 और 106वीं गाथा की चर्चा कल की। अब आज वो कहते हैं कि अतः एतत् स्थितम 107 और 108वीं गाथा की उत्थानी का अमृतचंद्र ने सिर्फ इतनी लिखी कि इससे अब यह बात नक्की हो गई। अतः एतत् स्थितम, अतः माने इसलिए, एतत् माने यह, स्थितम माने मेरे को पक्का हो गया, नक्की हो गया। अभी तक के कथन से क्या नक्की हुआ है, इस बात को इस गाथाओं में वो दोहरा रहे हैं। इसी छोटी सी वाक्य के लिए अपन ने पूरे प्रकरण से जोड़ने के लिए 4-5 लाइनों में इसकी उत्थानिका लिखी है। पीछे से पढ़ें। विगत गाथाओं में यह बात हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट हो गई है कि आत्मा प्रभावों का ना तो उपादान करता ही है और ना निमित्त करता ही है। फिर भी लोक में आत्मा को प्रभावों का कर्ता भोक्ता कहा जाता है, न केवल लोक में, आगम में भी इस प्रकार के अनेक कथन उपलब्ध होते हैं। इस कारण बहुत से आत्मार्थी बंधु असमंजस में पड़ जाते हैं। उन आत्मार्थी भाइयों के असमंजस को दूर करने के लिए आचार्य देव आगामी गाथाओं में कह रहे हैं कि यह सब कथन व्यवहार नय का है और वह व्यवहार भी प्रजा के दोषों का उत्तरदायी राजा को कहने के समान ही है। देखो, इस 7 लाइनों में अपन ने अतः एतम स्थितम इसका अर्थ लिखा। आपका भी जबरदस्ती इतना ही पर्याप्त था ना, इससे ये निश्चित हो गया। इसमें क्या कमी थी, क्यों इससे माने क्या, काय से नक्की हुआ, तो अकेली पिछली 2 गाथाओं से, ये पूरे प्रकरण से जो हम एक कर्ता कर्म की बात करते आ रहे हैं। और बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाओ तो घटपटादिक द्रव्य का व्यवहार से कर्ता कहा या घटपटादिक द्रव्य का है ना, घटपट स्थानीय द्रव्याणी, वहां से बात शुरू हुई थी और वहां से लेके यहां तक की गाथाओं का ये उसका फल ये है। उसके बारे में कह रहे हैं अब ये नक्की हुआ। कहने का मतलब ये है कि हमने अभी जो भी तर्क वितर्क दिए होंगे, यदि आप उनके उलझाव में नहीं भी उलझें तो आप ये समझ लें कि ये बात नक्की हो गई कि जितना भी परद्रव्य के संबंध में संबंध बताया गया है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का, वो सब व्यवहार नय का कथन है। और वो व्यवहार नय भी इतना स्थूल है कि जैसे वहां तो कहा था कि योद्धा लड़े और नाम राजा का हो, ऐसा व्यवहार। अब यहां बस वो ही है, थोड़ा बदला है लेकिन नए तो वो ही लगेगा जो वहां लगेगा। कहते हैं कि प्रजा के गुण दोषों का उत्पादक राजा को कहेंगे। क्या फर्क पड़ गया, क्योंकि इसमें भी परद्रव्य का की बात है, जो भी बताया गया परद्रव्य के बारे में गया है, और वो भी सैनिक लड़े और राजा लड़ता है ये कहने में, और जनता गलती करे और राजा की गलती वो कही जाती है, इन दोनों कथनों में फर्क क्या है, सोचो सर्वज्ञ। क्यों बदला उदाहरण, अभी तो वो पिछली गाथा गई नहीं है ना, वो लालचंद भाई की भाषा में कहना अभी स्याही सूखी नहीं है। अभी पिछली गाथा जो लिखी है उसकी स्याही अभी सूखी नहीं है, और अगली गाथा में ये कहने लग गए वही कह देते हैं। वो बढ़िया उदाहरण था ना, देखो वहां कर्ता की बात करनी थी और सुनो फिर उपयोग भ्रष्ट हो गया। वहां कर्ता की बात करनी थी और यहां भोक्ता की बात करनी है। किया लड़े सैनिक और श्रेय मिला कहो या बदनामी हुई कहो, जो भी आपको कहना हो वो राजा को मिला था, किया कुछ नहीं। और यहां अपराध जनता ने किया क्यों, और राजा को दंड राजा को मिला, बुरा राजा कहलाया है ना। तो वहां कर्तृत्व की बात है, भोक्तृत्व की है। कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता और भोक्ता दोनों की बात एक साथ चलती है, इसलिए उन्होंने दोनों जगह दो उदाहरण बदलकर और दोनों बातों को स्पष्ट कर दिया कि बात एक ही तरफ से नहीं है। ऐसा नहीं है कि सैनिक लड़े और श्रेय राजा को मिल गया, दूसरी तरफ से भी यह गलती जनता करे तो दंड राजा को मिलता है। रेलवे का एक्सीडेंट हो तो रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, है? क्या, और रेलवे के कर्मचारी अच्छा काम करके कमाई करके बताएं तो श्रेय रेलवे मंत्री को मिलता है, है? और हमको दोनों ही जगह अन्याय लगता है क्या। हम कहते हैं वास्तव में अन्याय तो है ही ना कि एक देव को दूसरे देव का कर्ता मान के बात कही गई, लेकिन इसमें काफी बैलेंस हो जाता है ना कि अकेला उसने श्रेय ही नहीं लूटा, उसके फल को भी उसने भोगा। अब देखिए बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आने में दिल्ली में खड़े रहने को जगह नहीं है, वो सारी व्यवस्था चरमरा गई, और मान लो कि खेल भी चरमरा जाए तो क्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बिल्कुल अयोग्य है। इतना पहले नक्की हुआ था और तब भी ये व्यवस्था ढंग से नहीं कर पाई क्यों, और बढ़िया हो जाए तो श्रेय भी उसको मिलने वाला है, हैं? और गलतियां नीचे की करी उनके उनने मान लो सबको अच्छे से अच्छे आदमियों को लगा दिया और कहां कहां गलतियां हुई वो तो एक बैठा लें आयोग और वो नक्की करे कि उत्तरदायी कौन है क्यों। और बाकी प्रकृति भी तो बहुत कुछ है ना, प्रकृति पे भी निर्भर करता है ना कि अभी एकदम सड़क पर 20 फुट गहरा गड्ढा हो गया, 20 सड़क में एकदम जाकर कल रात को जो बरसात हुई दिल्ली में उसमें 20 फुट गहरा गड्ढा हो गया। 20 फुट क्या होता है जानते आप, इसमें 20 फुट है बस, ये हॉल की ऊंचाई है ना, पहले 25 थी और अब जो मैंने मिलाकर के 20-21 रह गई है। इतना गहरा गड्ढा हो गया आप समझिए, 20 सड़क में बाकी काफी लंबा चौड़ा उसमें इतना मलबा लाके भरना पड़े तब वो जाकर के वो ठीक हो, बोलिए वो तो सड़क बंद करना पड़ेगी और मेन रोड हो तो क्या होगा। अभी मैं क्या करेगी शीला दीक्षित तो क्या करेगी सोनिया गांधी और क्या करेगा मनमोहन सिंह, हम सारे देश वाले कितनी ही गालियां देते रहे लेकिन अमेरिका में एक पत्रिका ने एक किया सर्वेक्षण तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 10 व्यक्ति निकाले, ये 10 व्यक्तियों ने सबसे बढ़िया काम किया और कुछ करके दिखाया, पहला नंबर मनमोहन सिंह का है पहला, दूसरा नहीं। और जो हम सब कठपुतली और फलाना जी और जेसीबी और ऐसी जी और नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद अभी सबसे ज्यादा समय वो प्रधानमंत्री रहा है सब, और कोई प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बाद नेहरू इंदिरा के बाद कोई आदमी इतने वर्ष तक नहीं रहा, 7 वर्ष तक वो रहा कोई नहीं रहा क्या। हम तो गालियां देते रहे कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया, वो अनाज सड़ गया अनाज सड़ गया, अब अनाज सड़ गया सड़ गया अनाज, गोडाउन तब फू करते तो बनते नहीं है, जितना अनाज पैदा होता था उतने गोडाउन बनवा लिए थे, अब बाद में उससे सवाया पैदा हो गया, अच्छा अच्छा मौसम आ गया तो अब वो जादू से तो बनते नहीं है गोडाउन, अब वो तो रखना ही पड़ेगा त्रिपाल में बांध के, वो खुले मैदान में रखना पड़ेगा सबूतरा बना करके, और वहां कितनी चौकीदारी करो, कितनी भी कुछ करो, अब मौसम की ऐसी प्रतिकूलता आ जाएगी हैं, तो भीग ही जाएगा। आप क्या कर लोगे, आपके घर में नहीं भीगता है, आपकी घर की व्यवस्था तो आप बहुत बढ़िया करते हैं क्यों, लेकिन बहुत चीजें आपके घर में भीग जाती हैं, सड़ जाती हैं, सब हो जाती हैं। घर के लेवल पर जितना होता है उतना होता है, देश के लेवल पर भी जितना होता है उतना होता है, कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने सब मुफ्त में बांट दो। अरे मुफ्त में बांटना पड़ेंगे तो भी अरबों रुपया खर्च होंगे, वो बांटने की व्यवस्था करना है, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर लगाए बांटने, लंबी लाइन लगेगी, जगह जगह भगदड़ मच जाएगा। किया था ना वो कौन से बापू ने कुछ साड़ियां बांटी थी मुफ्त में, हैं कैसा भगदड़ मच गया था, दो आदमी मर ही गए थे। वो मुफ्त में बांटने की व्यवस्था भी इतनी आसान नहीं है, अभी समझते मुफ्त में बांट दिया तो अकेला गेहूं गया है, कैसे नियम, किस आधार पर किसको दें किसको नहीं दें, ये सारे बड़े बड़े ठेकेदार उठा ले जाएंगे सब, और फिर उनको गरीबों को तो बेचारे उसी कीमत पर देंगे है? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो प्रशासक नहीं है, वो कहते हैं हाँ बांट दो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सरदार शरद पवार भी कहते हैं कि बांट दो, लेकिन वो आईएएस ऑफिसर कहते हैं साहब आपने तो कह दिया बांट दो प्रैक्टिकल कैसे होगा, और फिर वो सड़ा गेहूं कोई क्यों लेगा, फिर कहेंगे ये सड़ा गेहूं बांटा और वो गेहूं डाला करके दिखाएंगे क्या मर्यादा रहेगी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि राजा का दोष और गुण, प्रजा के दोष और गुणों को राजा को कहा जाता है। तो अभी ये अपन को कैसा लगता है एकदम, देखो पहले गाथा पढ़ लेते हैं फिर इसकी और ज्यादा जो गहराई है मैं उसकी बात आपसे करूंगा। उपादे ये करे दिए बंद गाथाओं का अर्थ तो पद्यानुवाद से काफी स्पष्ट है ना, कि उत्पन्न करना, करना और बांधना और प्रणमन करना, चार चीजें लीन, उत्पादे दी करे दी बंध दी और परिणाम ए दी, ये काय के बारे में है, खुदगल कर्म के बारे में, खुद कर्म का को आत्मा ना तो करता है ना उत्पन्न करता है ना बांधता है और ना परिणमाता है, चार चीजें ली। अब मान लो कि और खुदगल कर्म नहीं होता और सब ये कहते हैं कि ये इस पुस्तक का, तो वहां ये बंध जी शब्द नहीं लगाते, क्योंकि तो बांधने की बात तो कर्म ही के साथ है ना, मेरा अर्थ बाकी तो हो सकता है उत्पन्न किया किया परिणमाया, लेकिन बंध ही नहीं होता, तो हमको ये बराबर ध्यान देना होगा कि पुद्गल कर्म का आत्मा की चार चीजें पुद्गल कर्म के बारे में कही जाती हैं, और हमने बराबर कोई प्रथमानियोग के शास्त्रों में पढ़ करके ये बात नहीं कही है, जैसे ही कहते हैं ना, स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, आदिनाथ की दो शादियां हुई थी, दो पत्नियां थी, इतने बेटे थे, ये तो प्रथमानी योग का कथन है। क्यों? और ये शरीर और आत्मा एक है, ये तो चरणानी योग का प्रयोग होता है, ये जीव है, इनकी हिंसा ना हो जाए। लेकिन ये तो प्योर करुणानी योग का कथन है, इस धर्म कांटा पे तोला जाए कुआ कहा जाता है। और उसमें इतना इतना नियम है कि एक एक भाव अंदर में ऐसा ऐसा हो गए तो उसके अनुसार ही उतना ही पुरुगर कर्म बंधेगा, उसमें उतनी स्थिति पड़ेगी, इतना अनुभाग बंधेगा बराबर। और फिर वो कारमाएं बढ़ाए कर्म रूप परिणमित होंगी, समझे? ये सब चीजें मेरे कहने का बहुत बहुत सूक्ष्मता से और बारीकी से हैं। टोडमल जी ने परेशान होकर कहा, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहा निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, इसलिए जो हम भेद विज्ञान की बात करते हैं वो लोगों के गले उतरती नहीं है। समझ? यहां हम ऐसी ऐसी उंगली दिखाते हैं और वहां वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, तो हम कहते हैं हमने उसे गुस्सा करा दिया। आप कहते तो कहा फिर हमने देख बंद की कर दिया, नहीं वो गुस्सा कम हो गया, फिर हमने फिर बता दिया, फिर उसे भड़कता है। तो वो कहता है कि कैसे नहीं किया है ना, तुमने कैसे कुछ नहीं किया, तो उंगली हिलाई है ना, क्या उंगली हमने अपनी हिलाई ना, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। माने इतना उसके करुणानी योग का जो कथन है वो इतना एक्यूरेट है कि इसे जो तुम्हें गुस्सा आया है ना, तो निश्चित रूप से जितने अनुपात में गुस्सा आया है उतने ही अनुपात में पौद्गलिक क्रोध नामक कर्म का उदय है। देखो मैं उल्टी बात कह रहा हूं, उल्टी नहीं सीधी है। वैसे ऐसा नहीं कि क्रोध कर्म का उदय हो उसके उतनी ही मात्रा में गुस्सा आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा तो है ही ना। यानी हमने क्रोध कर्म का उदय अभी है, हमारे लिए ये जानना कठिन है अजित भाई कि गुस्सा आ रहा वो भाव क्रोध, उसे जानना कठिन है। बोलो, द्रव्य क्रोध को जानना सरल है कि भाव क्रोध को जानना सरल है? और सूक्ष्म तो द्रव्य भाव क्रोध है द्रव्य क्रोध से, क्योंकि आत्मा अमूर्त ही है और पुद्गल भी तो मूर्ति है। आप समझ रहे हैं? नहीं है, अमूर्ति को तो हम इंद्रिय ज्ञान से ही जान सकते और अमूर्ति को तो हम इंद्रिय ज्ञान से जान नहीं सकते, सिर्फ अनुभूति से जाना जाता है ना, इंद्रियां काम नहीं करती हैं। तो लेकिन क्योंकि हम आत्मा हैं, तो जो जो अनुभूति बोलते हो कि अनादिकाल से नहीं हुई, फिर लेकिन राग की अनुभूति तो अनादिकाल से हो रही ना, दुख की अनुभूति तो अनादिकाल से हो रही ना, अनुभूति की थोड़ी समस्या है, समस्या तो आत्मानुभूति की है। जैसे मैं कहता हूं ध्यान की थोड़ी समस्या है, समस्या तो आत्म ध्यान की है। ध्यान से खाली तो एक समय जीव नहीं है, पर अनुभूति से खाली भी एक समय जीव नहीं है। सवाल आत्मा की अनुभूति, आत्मा में अपनेपन की अनुभूति। अब पर में अपनेपन की अनुभूति तो अनादि से हो रही है, अनुभूति से तो खाली आत्मा है ही नहीं है? तो वो अपनी पर्याय होने से अपनी अनुभूति में पकड़ में आ जाती है कि हमें गुस्सा आ रहा है। अब द्रव्य कर्म का उदय होगा ये करुणान योग के शास्त्रों के आधार पर हम निर्णय करेंगे, क्या करेंगे, अनुमान करेंगे। अनुमान हमारा कैसा होगा? आगमाश्रित। ये आगमाश्रित कहने से बहुत कमजोर हो जाता है। कैसे हो जाता है कमजोर? क्योंकि परमत वाले तो मानेंगे ही नहीं, ये तो हमारे जिसको आगम में अटूट श्रद्धा है ऐसे जैनियों पर ये हथियार चलेगा कि आगम में ऐसा लिखा है। क्या इसे बोलते आगमाश्रित अनुमान? तो ये जो आगमाश्रित अनुमान है ये विपक्षियों के सामने नहीं चलते, अन्य मतियों के सामने नहीं चलते, ये अपने मत वालों के ही सामने चल सकते हैं। ख्याल में है। अब आप जानते हैं कि वो अनुमान व्याप्ति ज्ञान पर आधारित है। व्याप्ति ज्ञान माने कहा कि वो नियम कि जहां ऐसा होता है वहां ऐसा होता ही है ना। अनुमेय और व्यतिरेक दोनों घटित हो जाओं से व्याप्ति ज्ञान बोलते हैं ना। तो ये व्याप्ति ज्ञान हमें कहां से मिला? आगम से। और इसके आधार पर फिर हमने अनुमान किया, तो हमारा अनुमान हो गया आगमाश्रित। अब आगम की वो बात गलत सिद्ध हो जाए तो हमारा अनुमान बेकार है। तो सारा करुणानियोग हमारा अनुभव का विषय नहीं है, वो सर्वज्ञ की वाणी से आया है और उसे हमने माना है। ख्याल में आए ना, वो आगमाश्रित है इसलिए वो सूक्ष्म है, उसमें अपनी अकल ज्यादा नहीं काम करती है, उसमें तो आपकी स्मृति ज्यादा काम करे। बस आप रट लो, आपको याद रहे जितना, वो बात है। वो लिखा है जिस गुणस्थान में जितनी प्रकृतियों की बनविच्युति होगी उतनी की होगी। अब मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं तो अकल लगाकर ये दो कम कर दूं, दो ज्यादा कर दूं, ऐसा नहीं चलने वाला है। आप समझ रहे ना। तो वो कहते हैं कि अपुद्गल द्रव्य के बारे में आत्मा ने उसे उत्पन्न किया, आत्मा ने उसे प्रणवाया, आत्मा ने उसे बांधा, आत्मा ने उसको किया, किया और उत्पन्न किया, ये दो भेद किए। जैसे गेहूं एक दाना बोया और 100 दाना पैदा किए, इसको तो बोलते हैं उत्पन्न करना। और किया माने वो गेहूं को पीस कर आटा बनाया और फिर रोटी बना ली, इसे बोलते हैं करना। फिर नया क्या उत्पन्न किया? देखो इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है क्या, कि एक आदमी है उत्पन्न करने वाला और एक है करने वाला, तो ज्यादा महत्व किसको होना चाहिए? उत्पन्न करने वाले को, कि एक दाने के 100 दाने पैदा बना दिए तो वो तो नया उत्पादन हुआ ना। अब जितने बोरी गेहूं पैदा हो गए, अब उसमें से जो करने वाला है माने आटा बनाएगा, बिस्कुट बनाएगा, आप समझे ना, वो जो परिवर्तन करेगा जिसे अपन बेकारी कहते हैं, है ना, वो उसमें बढ़ाएगा नहीं घटाएगा ही। तो कहते उसने नया उत्पादन तो कुछ किया ही नहीं, क्या किया देश की सेवा के लिए? तो समझना माने उससे देश की खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती। वो व्यवस्था भी जरूरी है, अन्यथा उसकी कोई कीमत क्यों देता। लेकिन इसने एक दाना नया पैदा नहीं किया, समझ गए ना, उसने क्या किया, फिर परिवर्तन किया, बेकार पैदा किया। इतने बढ़िया गेहूं थे, उनकी मिट्टी पलीद करके बिस्कुट बना दी, समझ गए ना। अब तीसरे कौन होते हैं कि जिनने वो बनी फैक्ट्री में जो बनी बिस्कुट है वहां से लेकर उन बिस्कुट तो अच्छी नहीं लगती, डबल रोटी वो गरीबों तक पहुंचाई, क्या किया वहां से लेकर और गरीबों तक पहुंचाई, तो उनने क्या किया, उनने ना उत्पादन किया ना किया, उसने प्राप्त करता है, उनने तो प्राप्त किया वही उसे को दिया, इसे व्यापार आप बोलते हैं। पहला वो कहलाता है किसान, दूसरा कहलाता है उद्योगपति और तीसरा कहलाता है व्यापारी। समझ में आ गया ना। पैदा करने वाला किसान, उसके डबल रोटी बनाने वाला उद्योगपति और उसे यथा स्थान पहुंचाने वाला व्यापारी, तीन हो गए यानी। अब ये कहते हैं कि दूसरे ने और तीसरे ने, उद्योगपति ने कुछ नया पैदा नहीं किया लेकिन कम से कम उस अनाज को खाने लायक बनाया, इतना तो किया। व्यापारी ने क्या किया, उसने तो उनको टच भी नहीं किया, बस बंद पैकेट आया और बंद पैकेट यहां सप्लाई कर दी, उसे व्यापारी कहते हैं। समझ करना। अब तीन कर्ता हो गए ना, तो इकोनॉमिक्स कहता है कि असली महत्व मिलना चाहिए जो पैदा करता है उसे। अब पैदा करने वाला 1 किलो गेहूं पैदा करता है तो उसमें उसके 10 रुपए खर्च हो जाते हैं, खाद लगता है, खेत लगता है, पानी, और वो खतरे बहुत हैं। बरसात नहीं हुई, बाढ़ आ गई, रिक्स बहुत है क्या, और 10 रुपए पैदा हुआ और 11 के बाजार में बेचने में पसीना छूटता है। कम पैदा हो तो मुनाफा कम होना ही है, और ज्यादा हो जाए तो 9 रुपए किलो भी नहीं खरीदेगा कोई। क्या रमेश समझ में आया क्या? वो कहते उत्पादक को सबसे कम मिलता है, और इन्हें बिचौलिया बोलते हैं आजकल। कौन? वो जो उद्योगपति है, जो बनाने वाले और यहां वहां पहुंचाने वाले, कहते उन्होंने कुछ उत्पादन नहीं किया और बहुत बड़ा हिस्सा वो खा जाते हैं। 10 रुपए किलो किसान को पड़ा और 11 रुपए उसे बेचना है, 10% कमाते हैं, और ये 11 रुपए किलो खरीद कर 200 रुपया किलो में बेचते हैं। आप समझ रहे ना? अनुत्पादक श्रम और उत्पादक श्रम, तो जब तक ये अनुत्पादक श्रम इतना बीच में बिचौलिए इतने ज्यादा रहेंगे, तब तक, ख्याल नहीं ना मेरी कहने का मतलब यह है, तब तक वो हमारी समस्या हल नहीं होगी। जिन बिचौलियों को जितना हम कम करेंगे और उनका मुनाफा जितना कम होगा, तो एक उपभोक्ता और एक उत्पादक, इन दोनों के बीच में जो खाने वाले हैं, वो एक सिद्धांत है, वो जितने बड़ा गैप होगा उतनी ही बर्बादी होगी। क्योंकि किसान को 10 रुपया खर्च लगता है, और यदि उसको 9 रुपया मिलेंगे तो वो गोही गेहूं क्यों बोएगा? वो कपास बोएगा जिसमें 10 रुपए लगते हैं और 20 पैदा होते हैं, वो और ऐसी चीजें, अफीम बोएगा जिसमें 100 रुपया लगते हैं और 10 लाख पैदा होते हैं। वो क्यों बोएगा? तो ऐसी इकोनॉमिक्स जब इस कमजोरी किसे ग्रस्त हो जाती है, तो देश में अनाज कम पैदा होने लगता है, फिर अमेरिका से मकबुलाना पड़ता है। ये कहते हैं क्या हमें क्या नुकसान है, यहां 10 रुपए किलो किसान को दो, 8 रुपए किलो से अमेरिका में आ रहा है। लेकिन तुम्हारा वो पैदा ही करना बंद कर देगा, तुम पराधीन हो जाओगे, समझे ना? इसलिए हर गवर्नमेंट, हर विश्व की गवर्नमेंटें किसान को सब्सिडी देते हैं, खाद में, पानी में, बिजली में, क्या उनका कम लगेगा, समझ रहे ना, खर्चा, तो वो सस्ता बेच सकेंगे। और फिर भी कहते हैं कि इतने रुपए किलो तो हम तेरा खरीद ही लेंगे, ये गारंटी देते हैं, क्योंकि बाजार में चक्कर नहीं काटना पड़े। न्यूनतम मूल्य, व्यापारी के लिए कोई न्यूनतम मूल्य नहीं है, ना अधिकतम मूल्य है, करना पड़ती है ना सुरक्षा। अब वो कहते हैं, वो वित्त मंत्री का महत्व क्यों है, कि यदि वो उसे अधिकतम मूल्य दिला दे, 10 रुपए लगे और 15 रुपए में बाजार में बिक जाए, 15 रुपए में गवर्नमेंट खरीद ले, सुनना, तो सारे खेतियां बंद होकर गेहूं गेहूं बोए जाएंगे, और इतना गेहूं हो जाएगा कि तुम अमेरिका को भेज सकते हो, तुम दुनिया का पेट भर सकते हो, समझ गया? क्या क्या है उस सिद्धांत इकोनॉमिक्स का? अब इतना ज्यादा गेहूं पैदा हो जाएगा तो उसको बाजार में हम तो खरीद लेंगे, और बाजार में भी पहुंच जाएगा बाकी, और बाजार में उससे रहेगा और हमारा पड़ा पड़ा सड़ेगा। और क्या करेगा शरद पवार? ऐसा लगता है तुम कृषि मंत्री भी हो, खाद्य मंत्री भी हो, क्या नहीं, ये फैक्ट है, इसमें कोई ज्यादा अकल की बात नहीं है, थोड़ा भेजा चाहिए तो उसको इतना अधिक प्रोत्साहित नहीं कर सकते। क्यों? इतना अधिक पैदा हो जाए कि भाव इतने डाउन हो जाए। आपने देखा टमाटर 2 रुपए किलो भी बिक जाते हैं, 20 रुपए किलो भी बिक जाते हैं। अब बेचारे किसान के यहां बहुत ज्यादा पैदा हो गए तो अपन समझते अब तो माला माल हो गया, तब उस साल सारे सब सड़ते हैं, फिकते हैं, बेकारी बिकते ही नहीं है। कम पैदा हो तो ज्यादा कमा लेता है, कभी कभी ऐसा होता है। ये जो कहते हैं ना अर्थशास्त्री का क्या काम है, कैसे ये कंट्रोल होता है सारी दुनिया चीजें। तो वो जो अनुत्पादक श्रम है, तो इसके लिए ये रास्ते खोजे जाते हैं कि गवर्नमेंट से गेहूं ले, राशन की दुकान पर दे, सीधी राशन की दुकान से किसान को मिले और बीच के सारे बिचौलिया खत्म। इसलिए व्यापारी को नुकसान होता है इसमें, समझा। तो बड़े बड़े स्टोर खोल दिए बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, अपने कहते गवर्नमेंट ने उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है पर पूंजीपतियों को, अरे भाई उसमें वो सीधा खेत से खरीदता है और वहां से सीधा उपभोक्ता ले जाता है, तो वो दूने करे तो भी सस्ते भाव बेचता है। कहूं वो 10 आदमियों में बढ़ता था ना, उसके ट्रक भी अपने, ड्राइवर भी अपने, माल ढोने वाले भी अपने, यहां पर ढोने वाला, लाने वाला, खरीदने वाला, वहां तक आते आते 10 हाथों में जाते जाते वो सड़ जाता है, गल जाता है माल। इसने व्यवस्था बढ़िया की तो फटाफट ट्रकों से भर भर के माल वहां से आ गया मंडी में और एकदम लोग जानते हैं ताजा मिलेगा, फटाफट पहुंचते 2 घंटे में साफ हो जाता है जितना माल आता है, समझ गए ना। ताजी सब्जी सबको मिल जाती है, तो आप कहते क्यों ऐसा किया, इन उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे, गरीबों की रोटी छीन रहे, समझ लें। अरे वो यदि बिचौलियों को कम करना है तो एक बिचौलियों को ज्यादा देना पड़ेगा, क्या क्योंकि तो इतना बड़ा पूंजी लगाएगा, इतनी बड़ी जगह लगाएगा, एयर कंडीशन, इतना बड़ा मकान बनाएगा, वो तो साधारण आदमी होगा क्या है। और यदि वो 2 पैसे नहीं कमाएगा उसमें से तो कैसे चला जाए। अपन समझते हैं इन देशों में समृद्धि कैसे आ गई, कैसे आ गई। अब इतनी लंबी रामायण सुनाने का मतलब क्या, यहां तो बात ही चल रही है कि व्यवहार ने कहता उत्पन्न करना, ये करना, इन 4 चीजें करी ना, उत्पादे दी, करे दी, बंदे दी और परिणाम ये दी। तब वो कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य का आत्मा ने किया, ये ऐसा ही व्यवहार है, कैसा कैसा, जैसे प्रजा ने किया अच्छे बुरे काम तो राजा को उसका श्रेय अथवा बदनामी दी जाती है। अब मैं जरा इसको बोलता हूं, इतनी लंबी रामायण क्यों सुनाई, क्यों जी, राजा का कुछ भी दोष नहीं है। यदि गांव में चोरियां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, तो राजा की जिम्मेवारी कुछ नहीं है, क्यों, मोहल्ले गंदे हैं, शहर में गंदगी फैल रही है, सड़ रही है, तो राजा इसका जिम्मेवार नहीं है। एक निमचंद भाई थे, पहले आप लोगों ने शायद किसी ने नहीं देखे होंगे, एक आध आदमी होगा, रखियाल वाले कहलाते थे, लठ ठावा भाषा में प्रवचन करते थे, ये सब बिना शास्त्री वाले विद्वान थे, गुरुदेव से शक्ति करके कैलाश सिंह जी बुलंदसर वाले निमचंद जी लठ भाषा में, कड़क भाषा में बोलते थे, बहुत मुमुक्षु उन लोगों से तैयार भी हुए और झगड़े भी बहुत उनने कराए उन झगड़े वाली भाषाओं से। एक शकरचंद जी और एक कैलाश चंद जी, इन दो उत्तर प्रदेश के थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इन दोनों की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश वर्षों तक तत्व ज्ञान से शून्य रहा, क्योंकि जो लड़छा भाषा में बोलते थे सारी समाज उसके विरुद्ध हो जाती थी। जब अपन ने ये सब ट्रेनिंग दी, लोगों को समझाया, शुद्ध भाषा सिखाई, ये किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तब यहां प्रवेश हुआ। इसलिए मैं 10 साल तक गुरुदेव की आज्ञा से पूरा दिल्ली से देहरादून तक ही मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया, हर पर्यूषण उधर का किया, हर फंक्शन में साल में 10-10 दफे वहां किया, पंचकल्याणक वहां किए, कहां से दिल्ली से देहरादून तक पश्चिमी यूपी में है। और तब फिर धीरे धीरे इमेज बदली कि भाई ये ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात चल रही, राजा क्या नहीं है, वो नेमीचंद भाई क्या कहते थे कि हम किसी के घर जाएं तो दरवाजा देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये घर की मालकिन कैसी होगी। और फिर उसका उदाहरण देते थे आगे कि नाक छिनकी हुई लग रही है दरवाजे पे, या कूड़ा करकट पड़ा है, गंदगी पड़ी है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, तो ऐसे मालूम पड़ जाता था कि इसकी घर की जो औरत कितनी सुगढ़ है। पर यदि एकदम नीट एंड क्लीन, सफा सब अप टू डेट हर जगह मामला है, तो इससे पता चल जाता था कि उसकी कैसी क्षमता योग्यता है। ये उदाहरण भी बहुत दे रहे, तो उसका कुछ योगदान नहीं है, मैं वो हवाई कल्पना है। मेरे कहने का मतलब कि यदि प्रजा में दोष देखा तो ये उनका दोष नहीं है, और गुण देखा तो गुण नहीं है। ये पूरी कल्पना लोग की उड़ाने हैं क्या? ये अपन कहते थे भैया अभी क्या है, अंग्रेजों का राज्य था तो हाथ में सोना लेकर चले जाओ, कहीं कोई डर नहीं था। ऐसे कई बुजुर्ग लोग आज कहते हुए मिलते हैं कि नहीं कहते हैं। तो ये उन अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया था। क्यों? एक दफे कोई चोर पकड़ा गया तो उसे ऐसी कठोर सजा देते थे कि दूसरा आदमी सोच भी नहीं सकता था। क्यों? तो आज भी उसके लोग 63 साल हो गए आजाद हुए, और उसके गीत गाने वाले लोग मौजूद हैं कि नहीं है? और आज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो गया, ये इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतने मतलब भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। चाइना में क्यों नहीं होता? चाइना में बस आया एक भ्रष्टाचारी पकड़ा, सीधा फांसी पे चढ़ा दिया, बस खत्म। अब कोई जिसको फांसी पे चढ़ना हो वो कोई भ्रष्टाचार करेगा, और यहाँ बस आयोग बैठते रहते हैं अरबों रुपए वाले, आराम से उनकी जिंदगी कट जाती है। साहू जी आए थे प्रांतज में, तो उनपे कोई बहुत बड़ा केस चल रहा था और जो अखबारों में बहुत आ रहा था, तो हम लोगों ने पूछा कि साहब वो ऐसा ऐसा है वैसा क्या है, चिंता क्या की चिंता है, लगे हैं वकील लोग लगा दिए हैं, ऑफिसर लगे हैं, हमको क्या करना है उसमें। लेकिन वो केस तो इस तरह का है कि उसमें ऐसी सजा हो सकती है, फांसी की हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। हाँ हो सकता है, तो वकील लोग बता लेंगे, नहीं बता पाएंगे तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? तो क्या होगा कि वो तब तक खींचेंगे वकील और मजिस्ट्रेटों को पैसा दे दे के जब तक हम मन नहीं जाएंगे। कि उनके शब्द हैं, आपको बोल रहा हूं गद्दी पे, 90% उद्योगपतियों की यही हालत है, 50 केस चल रहे हैं और उनके उद्योग चल रहे हैं आराम से। क्यों? क्योंकि वो मजिस्ट्रेट घूस लेके भी उन्हें बचा नहीं सकता, अखबार वाले बैठे, शत्रु बैठे, कानून बैठी, ख्याल में आए ना, बस वो तो टल्ला लगा सकता है, इसके ही करोड़ों लेता है क्या कि केस को लेने पे आने नहीं देगा, हाई कोर्ट में केस को लगने ही नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट में केस को लगने ही नहीं देगा। आप समझ गए ना, सजा हो गई है बस खत्म। कब तक? जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए, और बाद में मृत्यु होते ही जितने कहते हैं इतने केस पड़े हैं और जिनको कोई निपटारा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पूछता हूं जितने कितने निपट गए, वो सब मरने की वजह से निपट गए। यदि लोग नहीं मरते तो देश ही पड़े रहते, इनने थोड़े निपटाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो भी कोई कल्पना नहीं है, वो व्यवहार में भी बहुत मजबूत है। जयपुर को नीट एंड क्लीन देखकर, जयपुर की बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था देखकर, क्यों कोई ये नहीं कहेगा कि यहाँ का वो IAS ऑफिसर वो इवन होगा, वो कलेक्टर इवन होगा, वो मुख्यमंत्री इवन होगा। मेरे कहने का मतलब एक अस्पताल में आप प्रवेश करते हो और उसकी व्यवस्था देख के आपकी समझ में नहीं आता है। तो प्रजा के गुण दोष देखकर और राजा को दोष जो दिया जाता है वो कोई गलत बात है, लेकिन वो परम सत्य नहीं है। वो अब जो एक इस तरफ के उदाहरण और एक उधर का उदाहरण, बस रेल की दुर्घटना हो गई, बरसात हो गई, 20 फीट का गड्ढा हो गया, अब कैसा क्या शीला दीक्षित का सारा माता है, ये तो बिल्कुल अन्याय है ना। लेकिन मालूम क्या करेंगे, ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि उन भ्रष्टाचारियों ने ऐसी सड़क बनाई तो इनके राज्य में वो भ्रष्टाचार हुआ, फिर ये कहेंगे उसके बाद ने मैनेजमेंट नहीं किया, जो लोग मरे उनकी व्यवस्था नहीं करी, उनको मुआवजा नहीं दिया, उनको सहयोग नहीं दिया, फिर दूसरा अल्टरनेट रूट नहीं बनाया निकलने के लिए, इतनी व्यवस्था में बहुत देरी करी, वहां चाय पीते रहे आराम से और यहां पर गड्ढा खुदा रहा, अब चाय बंद करने से गड्ढा खुद जाएगा क्या? एक गृह मंत्री का पद सिर्फ इसलिए चला गया कि उसने कहा कि मैं कपड़ा पहन के आता हूं, बस खत्म। अब नंगे थे क्या? उन कपड़ों में नहीं जा सकते था, कपड़ा बदलने की क्या जरूरत? पीछे पड़ गए बेचारे ने। इतना कह दिया कि नीट एंड क्लीन रहना, अच्छे कपड़े पहनना, ये भी कोई पाप है, बस फिर दूसरा बड़ा अपराध हो गया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि प्रजा के दोष और गुणों का उत्पादक राजा को कहा जाता है, वो भी हवाई कल्पना नहीं है, उसका भी बहुत ठोस आधार है, लेकिन परम सत्य नहीं है। क्या उसमें और भी बहुत फैक्टर काम करते हैं, हम समझ नहीं आ रहे हैं? तो ये जो कथन है कर्मों का कहना, ये भी बिल्कुल वैसा नहीं है। बाकायदे हमारे राग जैसा होता है उसके अनुसार कर्मबंध होते हैं, वो हवाई कल्पना नहीं है। मेरे कहने का मतलब, हमें मनुष्यायु बांधे बिना मां के पेट में नहीं आ पाए हैं, औष्टाद के राग किए बिना ये सारा हमारे जो है ना, ये हम शांति से यहां बैठ करके तब तो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो इसमें भी उस कर्म के उदय का बहुत योगदान है। किसके कर्म का उदय का? होल के। अरे एक एक व्यक्ति के। क्या आप बैठे हो तो आपके, हम बैठे हैं तो हमारे, जितने लोग इसके लाभ ले रहे हैं उनके एक एक का पुण्य कर्म का उदय के बिना वो लाभ ले सकते थे? हाँ बोलो हुकुमचंद जी, आपके पुण्य के लाभ के बिना आपको ये मिल सकता था ये लाभ लेने के लिए? ये तो ये कल्पना लोग की उड़ान है, नहीं है ना? और फिर हम कहेंगे गोदगा जी की प्रताप से भी बना गए रख गए तो इतना बढ़िया ही हो गया, तो हमें सुन गया, नहीं तो कहां बैठते? गुरुदेव की प्रताप से तत्व ज्ञान हमको मिल रहा है। अब असर सारी कितने फैक्टर हैं, हरेक के पुण्य का उदय, पाप का उदय, वर्तमान योग्यता, वर्तमान रुचि, हरेक की कितने कितने कारण हैं। लेकिन जब भी चर्चा आती है तो गुरुदेव आज 30 साल से गए हैं लेकिन उनका पुण्य प्रताप अभी खत्म नहीं हुआ, तो क्यों जी? उनका पुण्य प्रताप जहां भी होंगे वहां चल रहा होगा क्या? वहां जो उनको अनुकूलता मिल रही होगी, स्वर्ग में होंगे तो उनका पुण्य का उदय वहां चल रहा होगा क्या? यहाँ तो यहां वास्तव में किसका चल रहा है? आदि अनुकूलता है तो हमारा तुम्हारा। गुदगा जी ने ये हॉल बना दिया था, हमेशा प्रचन करता था, वो आते थे 8-8 महीना रहते थे अमेरिका, एक आध 2 महीने को आते थे प्रचन करते थे, तो मैं कहता था कि ये तो हमारे पुण्य के उदय से बना है, तुमने बनाया है, इसमें तो क्या दम है? तुमने तो वो भाव किया था जिससे वो पैसा इकट्ठा हुआ था, अब क्या था पुण्य पाप में झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं क्या? तुम्हें तो जिम्मेवारी उसकी मिलेगी, इसका लाभ तो पूरा हम ले रहे हैं ना क्यों? एक उदाहरण और देता था बहुत मार्मिक, सुनो कि यदि आज से 50 वर्ष पहले मेरे मां बाप किसी ज्योतिषी से, विद्वान से, मुनिराज से, अभिज्ञानी से पूछते कि ये हमारा बेटा जिंदगी भर कहां रहेगा और वो आकर के यहां लाकर के बताते कि यहां रहेगा क्यों? तो जब ये उस वक्त पता से आज से 100 वर्ष पूरे कर लो क्यों? तो 100 वर्ष पहले यहां क्या था मालूम? चंबल के जैसे गड्ढे, यहां 40 फुट गहरा गड्ढा था, इसलिए 40 फुट गहरा गड्ढा था, इसकी इतनी भराई हुई है। और फिर ऊंचा, फिर पहाड़ी, फिर गड्ढा, फिर पहाड़ी, फिर गड्ढा, तो कि क्या बता, ये मर के शेर होगा, किसी घर में डाकू होगा, इस चंबल के बीहड़ों में कौन रहता है? ये क्या सोचते बोलिए। लेकिन जी उन्हें पता नहीं था कि जब तक वो यहाँ के आने के काबल होगा तब यहाँ पर अलकापुरी की रचना हो जाएगी। क्या समझे ना? और हम तो यहाँ पर जैसे आकाश मार्ग से उतर के आते हैं ना, तीर्थंकर का जन्म होता है ना, तो वो सारी व्यवस्था पहले अप टू डेट होती है, नीचे एकदम भैया। क्यों ऐसे उतर के आ गए, ये बन बना के तैयार हो गया, हम आगे ठाट से रह रहे, हम उसका उपयोग हम कर रहे, पूरा भोग रहे हम। और जो अभी भी सात समुन्द्र पार क्यों पड़े रहे, चक्कर काट रहे हैं, कुछ आत्मा फात्मा की बात मिलनी नहीं। बोलो किसके पुण्य के उदय से? लेकिन कहा तो यही जाएगा, उनका पुण्य प्रताप है। ये कहने को नहीं रोक सकते तुम, यदि इसके विरुद्ध में उनने क्या किया, कुछ नहीं, हमारा है, गए काम से। लोक का स्वरूप ऐसा है। तो वो जो महिमा गाई जाती है वो भी कोई कल्पना लोक की उड़ान नहीं है, उसका भी ठोस आधार है। देखो टीका पढ़ते हैं अपन। वस्तुतः आत्मा व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण प्राप्त विकारो निर्वृत्त। देखो यहां भी बोली ले लिए उनने टीका में, जिनकी अपन ने चर्चा की ना, भी ऐसे पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को ग्रहण नहीं करता, परिणमित नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता और न उसे करता है न बांधता है, फिर भी अर्थात व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी प्राप्त विकारो निर्वृत्त रूप पुद्गल द्रव्यात्मक कर्म को आत्मा ग्रहण करता है, परिणमित करता है, उत्पन्न करता है, करता है और बांधता है। इस प्रकार का जो विकल्प है वह वस्तुता उपचार ही है। व्याप्य व्यापक भाव नहीं है इसलिए करता तो है ही नहीं। और ये जो कहा जाता है तो बिल्कुल वो उपचरित कथन है। अब वो उपचरित कथन इतना व्यापक है कि वो निश्चय का कथन तो कोई शास्त्र सभा में कहीं होता होगा और ये गली गली में होता है, समझे ना। यदि कोई कहे कि किस प्रकार, तो कहते हैं कि जिस प्रकार प्रजा के गुण दोषों और प्रजा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से, व्याप्य व्यापक भाव होने से प्रजा ही अपने गुण दोषों की उत्पादक है, क्योंकि प्रजा और उसके गुण दोष उसका उसमें, प्रजा तो एक समूह का नाम है, तो एक एक व्यक्ति का एक एक व्यक्ति के साथ लेना अभी कॉमन बात है। यह स्वभाव से ही सिद्ध होने पर भी प्रजा के गुण दोषों और राजा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी उपचार से कहा जाता है कि प्रजा के गुण दोषों का उत्पादक राजा है। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों और पुद्गल द्रव्य में व्याप्य व्यापक भाव का भाव होने से पुद्गल द्रव्य ही अपने गुण दोषों का उत्पादक है। यह स्वभाव से ही सिद्ध होने पर भी पुद्गल के गुण दोषों और आत्मा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने पर भी उपचार से कहा जाता है कि पुद्गल के गुण दोषों का उत्पादक जीव है। इन गाथाओं में अंतिम रूप से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आत्मा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है, क्योंकि यह आत्मा ना तो उन्हें उत्पन्न करता है, ना करता है, ना परिणमित करता है, ना ग्रहण करता है और ना बांधता ही है। देखो करुणा नियोग का पूरा राजमहल इस पे ही खड़ा है, जो जैसा जो करे सो भरे, और तुम जो करोगे उसका फल वह है। कर्म बंधे बिना रहेगा नहीं, कर्म कभी छोड़ता नहीं किसी को, तुम ये समझ लो, समझे ना। तो एक एक बात को इस भाव से करोगे तो ये करेगा, इस भाव से करोगे तो ये करेगा, इस भाव से करोगे तो ये करेगा। इतनी इतनी बारीकी जो निमित्त निमित्त तो संबंध को बताएगा, वो उपादान उपाधि संबंध की बात ही नहीं करता। अब वो कहे कि वो यहां तो कहे केवली गम्य बात है, तो धर्म कांटा वो है, समझ गया ना। और यहां कह रहे वो इतनी झूठी बात है, इतनी चौड़ी खाई है। क्या गरीब भाई है? इसका पूरा बैलेंस समझे बिना ये प्रतिपादन भी बहुत खतरनाक है, इसलिए जो विद्यार्थी लोग हैं इनको इनको कितना ठोस कितना आधार विद्वान बनना चाहिए। क्योंकि जब अपनी बात को आगम से सिद्ध नहीं कर पाए, युक्ति से सिद्ध नहीं कर पाए, तो कोई जगत इस बात को मानने वाला नहीं है। क्यों? अब फिर ये क्या करेंगे कि नहीं जगत जैसी कहने लगेंगे, तो इस 5 साल के पढ़ने का फायदा क्या है? क्यों? आप नहीं जानते कि हमारे मेडिकल साइंस ने सारी मान्यताएं बदल दी। पहले कहते थे भाई बुखार आ गया तो बस नहाना धोना बंद। क्यों? बिल्कुल 8-8 दिन तक नहाने ही नहीं देते थे उसे, है? और आज इतना बड़ा ऑपरेशन करते हैं, ये कहते हैं तो अभी रोजी ना स्पंज करते हैं, क्या फिर नहाते हैं, बोलिए कि नहीं करते, क्या नहीं करते? पहले कहते हो ये खाना ये गर्म होती है, ये ठंडी होती है, ये मत खाओ। अब और जाने तो जापा होता ना, बाल बच्चे होते हैं तो पुराने जमाने में तो कैसी कैसी चीजें, ये पानी जो 10 मूल का काढ़ा हो जाए और वो, और आज तो पहले ही ना बर्फ का पानी ठंडा पानी पिलाते हैं। क्यों? वो कहते कैसे हो सकता है, कोई इन्फेक्शन ही का डर लगता था ना पुराने जमाने में, हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं और ये पानी बिल्कुल शुद्ध है, बिस्लरी का है, ठंडा हो, ठंडे ठंडे से थोड़ी कोई इन्फेक्शन होता है। अब ठंड लग गई, ठंडे पानी से ठंड लग गई, क्यों बदलती ना सारी चीजें, हैं? और अभी अभी भी घर घर में झगड़ा होता है, जब बहू के जापा होना होता है तो सासें कहती है कि नहीं 10 मिनट का काढ़ा पिलाओ और ये कराओ, घर से बाहर नहीं निकलो, कमरे खिड़की मत खोलो, कमरा में हवा लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, डॉक्टर कहता सारी खिड़की खुल के रखो, खोल के रखो, एयर कंडीशन लगा दो, करते क्या नहीं करते हैं, हैं? बोलिए क्या है? अरे हर घर घर में झगड़ा होता है, हर घर में झगड़ा होता है, हैं? देखे नहीं डॉक्टर क्या समझते हैं, और हमने सारी जिंदगी में 10-10 बच्चा पैदा करे, ऐसे ही थोड़ी करे, ऐसे इसने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया। घर में रोते हैं लोग, दोनों तरह की बातें होती है। अब ऐसी बात है कि यहाँ कह रहे हैं कि बिल्कुल एक करता है, एक करता है, एक करता है, करता की भाषा, और यहाँ कहते हैं बिल्कुल जीरो ही नहीं है, करता है ही नहीं। तो कितनी जगत के विरुद्ध कितनी बड़ी बात तुम्हें कहना है, तो उसको कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। और उसकी जिम्मेवारी ये नहीं कि तुम्हारा प्रयोजन बंद हो जाएगा कि तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, उसका आफ्टर इफेक्ट ये है कि जो ये जो तुम्हारे 500 साथी हैं ना, वो भी प्रभावित होंगे, वो तत्व ज्ञान की धारा भी प्रभावित होगी। क्या है? आपके कोई गलत एक्शन को देखकर जब उस पर तर्क युक्तियां नहीं होंगी उसके सामने, तो वो उस पर आक्रमण करेगा। क्या वो उस पर आक्रमण करेगा? जब मुझे क्रमवत पैदा की श्रद्धा हुई थी ना, तो तब मैं 21 वर्ष का था और रोजाना मंदिर में प्रवचन करता था। तो उस सुबह मंदिर में सुबह हम घूमने जाते थे नहा धो करके, और हाफ पैंट पहन के वैसे पहन के जाते करते थे ना, तो एकाएक मैं कभी कभी मंदिर में प्रवचन में भी वैसे ही कपड़े पहन के प्रवचन करने चले गए, प्रवचन करने चले गए तो वहां चर्चा हुई। एक पंडित थे राजकुमार जी, बिल्कुल बुजुर्ग, तो उन्होंने चर्चा की, लेकिन तर्क स्थितियों के आधार पर, आगम के आधार पर वो ठंडे पड़ गए और हमारी बात सिद्ध हो गई। तो कहने लगे अच्छा ये हाफ पैंट पहन के गद्दी पर बैठा जाता है, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो जो हमारे पक्के साथी थे, पंडित जी बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, क्या समझे ना आपको, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो पंडित जी का कहना ठीक है। वो हमारा सारा सत्य एक तरफ रखा रह गया है, और हमारे जो पक्के साथी पक्के समर्थक थे, वे भी हमको ये समझाने लग गए कि पंडित जी ने बात तो ठीक कही। क्यों? हमने समझ लिया है कि भाई ऐसा नहीं है। हमने एक श्लोक पढ़ा था कि वस्त्रों का कोई महत्व तो नहीं है ये मत समझना, बाघांग बरम वीक्ष विषम दधौच, क्या पीतांग बरम वीक्ष दधौच लक्ष्मी, समुद्र के पास लक्ष्मी विष्णु जी गए तो पीला कपड़ा पहने थे, तो पीतांबरम वीक्ष पीला कपड़ा देखकर और समुद्र ने अपनी कन्या लक्ष्मी लक्ष्मी की शादी उससे कर दी। क्या पीला वस्त्र देखकर बढ़िया अच्छे श्रृंगार में देखकर मोर मुकुट लगाए हुए क्या किया, अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी कर दी, मैंने धनवान कर दिया, लक्ष्मी का मतलब समझ गया ना। और शंकर भगवान गए तो बाघाम्बरम बाघ की खाल लपेटे थे, गले में सांप पड़े थे, क्यों तो बाघाम्बरम बीच से विषम दधौचे, उन्हें जहर दे दिया, पियो बेटा जाओ मरा। तुम्हें सांप जहर पसंद है ना, सांप बहुत लगाए हो, तो ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं है। उसमें लिखा है कि वस्त्रों के ऊपर की पंक्ति ऐसी मैं भूल गया हूँ कि वस्त्रों का कोई महत्व तो नहीं है, ये मत समझना बेटा, वस्त्रों की भी बहुत कीमत है। क्या सीताम्बरों वीक्ष दधौच लक्ष्मी, बाघाम्बरों वीक्ष विषम दधौच। सीताम्बर देख करके उनको लक्ष्मी दे दी और बाघाम्बर देखकर उनको जहर दे दिया, उसी समुद्र, एक ही समुद्र में। इसलिए हमारा वेश विन्यास खान पान उठना बैठना ये भी ऐसा सात्विक होना चाहिए कि कहीं ये जीती बाजी भी हम हार न जाएं। हमने ये अनुभव कर करके सीखा है, क्यों, क्योंकि हमको कोई ये बताने वाला नहीं था और तुमको ये पहले से जानने को मिल गई है, तो तुम चाहो तो बिना अनुभव के भी सीख सकते हो, नितर के समाज तो सिखा ही देगा दो चार जगह पिटाई होगी तो तुम्हारी समझ में भी आ जाएगा, पर धीरे धीरे यदि इस क्षेत्र में रहना है तो तुम्हारी समझ में वो बात भी आ जाएगी।